आज है 30 अगस्त दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। उत्तर कोरिया ने कहा जापान के ऊपर से गुजारी गई मिसाइल फौजी कार्रवाई का पहला कदम था, कुछ और मिसाइलें दागी जाएंगी। गोरखपुर के अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। भारत प्रशासित कश्मीर में गायब हुए लोगों के परिवार वालों का प्रदर्शन।
हमारे पास न कोई मालगुजार न कोई जेल है, हम जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा।
दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों ने किया एक नायाब ऑपरेशन।
हमने ये सोचा कि जैसे हार्ट के लोग बाईपास करते हैं, ऐसे क्यों ना ब्रेन का बाईपास करा जाए।
और क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए?
समाज में एक प्रकार की अव्यवस्था इसके कारण से निर्माण हो जाएगी।
वैवाहिक बलात्कार में और साधारण बलात्कार में कोई अंतर नहीं।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि जापान के ऊपर से मिसाइल दागना प्रशांत क्षेत्र में उसकी कार्रवाई का पहला कदम है। इसी के साथ उत्तर कोरिया ने आने वाले समय में और परीक्षण करने के संकेत दिए हैं। प्योंगयांग ने कहा है कि ताजा मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साझा सैन्य अभ्यास का जवाब है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा की है। हालांकि सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के मसौदे में उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी शामिल नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन उत्तर कोरिया की कार्रवाई के जवाब में सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेगा। चीन और उत्तर कोरिया पड़ोसी हैं, हमारी परंपरा दोस्ती की है और यही एक सच है। लेकिन उसी समय उत्तर कोरिया के बर्ताव ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। ऐसे में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते और एक जिम्मेदार देश होने के नाते चीन क्षेत्र की स्थिरता, शांति और परमाणु और प्रसार संधि को बचाने के लिए इस कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष साफ कर देना चाहता है। किथे वांग यी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में पिछले 3 दिन में कम से कम 60 बच्चों की मौत हो गई है। 12 अगस्त को खबर आई थी कि बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक ही दिन में कई बच्चों की मौत हो गई थी। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बिल नहीं चुकाने की वजह से कथित तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई काटे जाने की खबर आई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इससे इनकार किया था। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 दिन में जो मौतें हुई हैं वो इंसेफेलाइटिस समेत अन्य कई बीमारियों की वजह से हुई है और इनका ऑक्सीजन सप्लाई से कोई संबंध नहीं है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें कई नवजात बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में 4 दिन तक कहर बरपाने के बाद चक्रवात हार्वी पड़ोसी राज्य लुइसियाना की तरफ पड़ गया है। अमेरिका में नेशनल हरिकेन सेंटर ने बताया है कि कैमरन शहर में चक्रवात हार्वी दूसरी बार तट से टकराया है और अगले 2 दिन में मिसिसिपी और टेनेसी शहरों में निचले इलाकों की तरफ बढ़ जाएगा। ह्यूस्टन में बचाव कार्य जारी है और कर्फ्यू लगाया गया है। करीब 3,000 घर बाढ़ में तबाह हो गए हैं और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमरीका में भारी बारिश की वजह से कई जलाशय छलक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वेनेजुएला की सरकार ने अपनी नीति के तहत राजनीतिक विरोध को दबाने और जनता में डर फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल से वेनेजुएला में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हिंसा का शिकार हुए लोगों, चश्मदीदों, वकीलों और डॉक्टरों से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एजेंसी के हाई कमिश्नर जैद राद अल हसन ने कहा है कि वेनेजुएला की सरकार ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया।
It is clear that the policies pursued by the authorities in their response to the protests.
ये साफ है कि विरोध प्रदर्शन निपटने के लिए जो नीतियां अपनाई गईं वो आम वेनेजुएला वासियों की कीमत पर लागू की गई। शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार का उल्लंघन किया गया और इसमें शामिल लोगों को राजनीतिक विरोधी बताकर हिरासत में लिया गया। ये थे जैद राद अल हुसैन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में अप्रवासन मामलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में कम से कम लाखों रोहिंग्या मुस्लिम लोग म्यांमार के राखिन प्रांत की सीमा से भागकर आए हैं। सहायता कर्मी रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए शरण और खाना का इंतजाम कर रहे हैं और इनका कहना है कि कई मुस्लिमों के शरीर पर गोलियों के निशान देखे गए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर लाइव सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छोटे बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। ताज़ा जानकारी लेंगे गोरखपुर से, लेकिन पहले खबर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बारे में। कल यानी मंगलवार को उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी थी जो जापान के होक्काइडो टापू के ऊपर से होकर गुजरी, और आज उत्तर कोरिया अधिकारियों ने इसे प्रशांत महासागर में फौजी कार्रवाई का पहला कदम बताया है और संकेत दिए हैं कि इस तरह की और भी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। इस घटना से पहले ही बढ़ रहे तनाव में और बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देश सतर्क हो गए हैं। अब उत्तर कोरिया कह रहा है कि गुआम द्वीप भी उसका अगला निशाना हो सकता है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
मंगलवार को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के मिसाइल दागे जाने पर आपात बैठक हो रही थी, उसी समय उत्तर कोरिया के धमकी भरे बयान की खबरें आना शुरू हो गईं। उत्तर कोरिया ने कहा कि जापान के ऊपर से मिसाइल दागना प्रशांत क्षेत्र में उसकी सैन्य कार्रवाई का पहला कदम है। उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया भी प्रशांत महासागर में अमरीकी द्वीप गुआम पर हमले की लगातार धमकी देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागे जाने की एक बार फिर सर्वसम्मति से घोर निंदा की और उत्तर कोरिया को फौरन अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम बंद करने को कहा। सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को भड़काने वाली कार्रवाई बताया है, लेकिन इस बयान में किसी नए प्रतिबंध की बात नहीं की गई है, बल्कि जो प्रतिबंध अब तक लगाए गए हैं उन्हीं को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। सुरक्षा परिषद ने यह भी दोहराया है कि इस मसले का हल शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में बोलते हुए अमरीकी दूत निकी हेली ने उत्तर कोरिया को एक बार फिर चेताया।
The world is united against North Korea. There is no doubt about that. It is time for the North Korean regime to recognize the danger they are putting themselves in. The United States will not allow their lawlessness to continue, and the rest of the world is with us.
पूरा विश्व उत्तर कोरिया के खिलाफ एकजुट हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उत्तर कोरिया की सरकार के लिए समय आ गया है कि वो खतरे को पहचाने जिसमें वो अपने को डाल रहे हैं। अमेरिका इस तरह की अराजकता को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और सारी दुनिया हमारे साथ है। ये थे निकी हेली के शब्द। उत्तर कोरिया पर अब तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 बार प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण जारी रखा है। मंगलवार को दागी गई उत्तर कोरियाई मिसाइल जापानी द्वीप के ऊपर से गुजरने के बाद समुद्र में जा गिरी। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात पहली बार स्वीकार की। KCNA की तरफ से कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने यह कार्रवाई अमरीका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में की है। अमरीका और दक्षिण कोरिया का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी जारी है। अमरीका का कहना है कि ये दशकों पुराना अभ्यास है और इसका मकसद कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिरता कायम रखना है। अमरीकी सेना के पैसिफिक कमांड ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागे जाने और फिर और मिसाइलों की धमकी के जवाब में अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली को भी जांच लिया है। अमरीकी सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उसने हवाई में एक प्रशिक्षण में मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को एक युद्धपोत पर तैनात अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली की SM-6 मिसाइलों से मार गिराया है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज दुनिया भर में उन लोगों को याद किया गया जो गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए। भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले 3 दशकों से चल रही हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग इसी तरह गायब हुए हैं। उनके परिवार वालों ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन किया और संकल्प लिया कि जब तक गायब हुए लोगों के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती तब तक वो विरोध जारी रखेंगे। उनके समर्थन में पाकिस्तान के कराची शहर में भी प्रदर्शन हुए। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
लापता लोगों की याद में आज मनाए गए वैश्विक दिन पर भारत प्रशासित कश्मीर में भी पीड़ित परिवारों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए। अपने लापता प्यारों के इंतजार में दर्जनों पुरुष, महिलाएं और बच्चे हर साल धरने पर बैठते हैं। श्रीनगर की सफिया आजाद 23 वर्ष से पति के इंतजार में हैं, परंतु इनकी वापसी की इन्हें आज भी आशा है।
हमारा दिल यकीन नहीं करता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। उनको बाजब्ता किसी ने लिया है, पकड़ के घर लाया है, शाम को रेड डाला है। जो लड़के उनके साथ बंद थे, 1 साल 1.5 साल के बाद उनको रिलीज किया तो उन्होंने बोला हमारे साथ, कैसे हम मान लेंगे उनके साथ कुछ हुआ।
26 साल से लापता बेटे को ढूंढ रही परवीना अहंगर न्याय की इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। उन्होंने लापता लोगों के परिवार वालों का संगठन एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्संस नाम से बना लिया है और इसी संगठन द्वारा वो विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं।
हमारी इंतजार खत्म नहीं हो जाएगा जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाएगा। हमारे पास न कोई मालगुजार न कोई जेल है। हम जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा।
मानव अधिकार संगठनों के अनुसार 27 वर्षीय तनाव के दौरान 8,000 लोग लापता हो गए हैं और इनके 2,00,000 से ज्यादा परिवार जन न्याय चाहते हैं। APDP के संस्थापक और कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के अध्यक्ष परवेज इमरोज कहते हैं कि भारत सरकार जांच की मांग को टाल रही है।
श्रीलंका में 4 कमीशन अपॉइंट हुए हैं, नेपाल में हुए हैं, पाकिस्तान में भी लापता जो है वहाँ भी कमीशन अपॉइंट हुए हैं, थाईलैंड जहाँ भी, लेकिन कश्मीर जो वाहिद है कि यहाँ कमीशन अपॉइंट नहीं करते कि कितने लोग लापता, ये तो डिनाई करते हैं ना, लेकिन ऑफिशियली ये मानते हैं कि 4,000 लोग जो है वो मिसिंग है, वो गए कहाँ।
गौरतलब है कि अब ये सिर्फ पीड़ित परिवारों का ही मसला नहीं रहा, छात्र और छात्राएं भी अब इनका हाथ बटा रहे हैं। सबिया डार उन दर्जनों लड़कियों में से हैं जिन्होंने लापता लोगों के परिवार वालों की मदद करने को ही अपना करियर बना लिया है।
जब तक कि घर वाले काम करने दें आगे, तो तब तक ये काम करना है। इवन दो क्योंकि यहाँ पे हम कश्मीर में रहते हैं, फिर बेटी की शादी होती है, पता नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं भी करने दिया, आई विल वर्क फ्रॉम माय होम एंड आई विल नेवर स्टॉप दिस।
भारतीय विशेषज्ञों और विश्लेषकों का एक वर्ग भी इनके साथ सहानुभूति रखता है। ब्रिटेन और भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर दिवेश आनंद भी आज के धरने में शामिल थे।
इंडियन स्टेट है वो काफी सक्सेसफुल रहा है इनको कन्विंस करने में लोगों को कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रीडम का प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। और ये इस प्रोपोगंडा में इंडियन डेमोक्रेसी काफी सक्सेसफुल रहा है, और मैं कहूंगा ये इंडियन सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा फेलियर है।
स्थानीय सरकार ये तो मान चुकी है कि 4,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, लेकिन गुमनाम कब्रों से लाशें निकालकर इनकी DNA जांच के सुझावों पर भारत सरकार भी खामोश है और स्थानीय प्रशासन भी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नगर गोरखपुर में नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला जारी है। खबरों के मुताबिक पिछले 3 दिन में कम से कम 60 बच्चों की मौत हो गई है। जिस अस्पताल में ये बच्चे मरे हैं उसी में कुछ समय पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दिए जाने के कारण कई बच्चे मारे गए थे, पर इस बार अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में हुई मौतें न तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई और न ही खतरनाक बीमारी एन्सेफेलाइटिस के कारण। आइए बात करते हैं गोरखपुर में स्थानीय पत्रकार कुमार हर्ष से, जो फोन के जरिए हमारे संपर्क में है। कुमार हर्ष, पता नहीं फोन लाइन का कोई भरोसा है नहीं, अगर बीच में कट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये बताइए कि ये मौतों का सिलसिला जारी है, खबरें आ रही हैं, आप वहाँ गोरखपुर में मौजूद हैं, कितने बच्चे दम तोड़ चुके हैं?
देखिए, मौतों जैसे संवेदनशील मामले को आंकड़ों में पढ़ना बहुत ही आपराधिक किस्म का लगता है, मगर बीते 90 घंटों में 72 बच्चों की मौत हो चुकी है और रविवार से मंगलवार तक 63 मौतें हुई थी। कल रात 12 बजे से लेकर अब तक, अब से थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हुई थी, तो उस समय इन 18 घंटों में भी 9 मौतें हो चुकी हैं।
18 घंटों में
जी।
और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वहां पहुंचे थे जब पिछली बार बच्चों की मृत्यु हुई थी, अब ये किसी की आत्मा को झंझोड़ रही हैं ये मौतें, अधिकारियों की, नेताओं की, आम जन की, पत्रकारों का तो खैर क्या कहा जाए, आप वहां जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या कहां कुछ हिल रहा है, क्या कुछ किसी को असर पड़ रहा है?
ये भी कहना तकलीफ देह है कि शायद जिस तरीके की प्रतिक्रियाओं की या जिस तरीके के बदलावों की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं, वैसा अभी भी BRD मेडिकल कॉलेज में धरातल पर नहीं दिखता। और एक समाचार माध्यमों से बातचीत करते हुए नेताओं से लेकर और वहां के मेडिकल कॉलेज प्रशासन तक, उन सबके पास एक जवाब होता है कि अगस्त में या इन दिनों में जब बारिश का मौसम होता है तब इस तरह से बच्चों की मौतें होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल सारी मौतों के साथ साथ एक गौरतलब बात यह है कि नियोनेटल डेथ्स की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। आमतौर पर जो नियोनेटल वार्ड्स में, यानी जो नवजात शिशुओं के लिए जो वार्ड बनाया जाता है, उसमें देश भर में भी मृत्यु दर ऐसी रही है 16-17% रही है, लेकिन यहाँ पर इस साल ये 40% के आसपास हो चुका है। और एक जो आमतौर पर बाहर समझा जाता है कि गोरखपुर में या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो मौतें होती हैं बच्चों की, वो सब इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, ऐसा नहीं है। इस साल भी जो अब तक मौतें हुई हैं, तकरीबन 1260 जनवरी से लेकर अब तक बच्चों की मौत है, इसका 15% हिस्सा यानी 181 के करीब मौतें इंसेफ्लाइटिस से हुई हैं। तो मेरी समझ से ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हम सामान्य बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को भी नहीं बचा पा रहे हैं।
ये तो और खतरनाक बात है, ये तो और गंभीर बात है, क्योंकि एंसेफेलाइटिस एक बीमारी है अगर उसके बावजूद या उसकी वजह से नहीं दूसरी कारणों से अगर बच्चे मर रहे हैं जिनको बचाया जा सकता है, तो स्थानीय प्रशासन सरकार उसके पास कोई जवाब है क्या?
जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि प्रशासन ये मान के चलता है और ये लगातार कह रहा है कि इस मौसम में इस तरह से बच्चों की मौत होती है, मगर बार बार ये ध्यान में लाया जा रहा है मीडिया द्वारा और बहुत सारे इस तरीके के जो स्वतंत्र विचार वाले लोग हैं वो इन आंकड़ों को सामने ला रहे हैं। और जो डॉक्टर्स भी हैं, अभी कुछ समय पहले मेरी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर के पी कुशवाहा साहब से बातचीत हुई थी और वो भी मानते हैं कि जो नियोनेटल डेथ्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि ये बहुत खतरनाक बात है और इनको बहुत मामूली उपायों से, साफ सफाई से, निचले स्तर पर जो पीएचसी और सीएचसी को स्ट्रेंथन करके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बदलाव किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ा खतरा इन्फेक्शन का होता है छोटे बच्चों में
जी,
उसके लिए कहा जाता है कि एक बेड से दूसरे बेड के बीच में 3 फीट की दूरी होनी चाहिए,
लेकिन वहां तो एक बिस्तर में
तीन
होते हैं
बच्चे हैं।
कुमार हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये खबर तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इस पर नजर आप रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की, जो कल पूरी तरह से जलाप्लावित थी, यानी इस शब्द को कहने में मुझे कम से कम 3 बार कोशिश करनी पड़ी। जलाप्लावन जो संस्कृत का शब्द है वो मुंबई के शहर के लोगों ने कल उसको झेला था। सड़कें, रेलवे स्टेशन, मोहल्ले, बाजार, मैदानों में नदियों की जगह पानी बह रहा था। लाखों लोग बारिश और बाढ़ के कारण घंटों में फंसे रहे। आज बारिश से थोड़ी राहत है। हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले इस समय मुंबई से हैं हमारे संपर्क में फ़ोन के ज़रिए। सुप्रिया, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? बारिश तो थम गई है लेकिन स्थिति में सुधार है क्या?
जी, यहाँ पे सामान्य जीवन में सुधार है। अब यहाँ वहाँ जितने पानी जहाँ भरा हुआ था वो सब निकल चुका है। ट्रेनें चलना शुरू हो गई, लोकल ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है, विमान यात्रा भी शुरू हो चुकी है सुबह से ही, और सिर्फ कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से नहीं जा रही, कैंसिल, वो रद्द कर दी गई थी। बाकी सामान्य जीवन, अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं और गणपति का त्योहार चल रहा है, लोग उसमें भी मग्न हैं।
और अधिकारी क्या कह रहे हैं?
जी, आज हमारी बात हुई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अजय मेहता की, उन्होंने बताया कि ये असामान्य स्थिति थी। अगर हम उसकी बात करें, मौसम की बात करें, तो असामान्य था क्योंकि 325 मिलीमीटर बारिश हुई 12 घंटे में।
जी, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।
जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे मलेरिया और डेंगू होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसलिए हमारे जो अधिकारी हैं वो इस वक्त हर जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम बहुत बड़े पैमाने पे जहां पर विशेषतः स्लम है उसमें स्प्रेइंग का कार्यक्रम लिया है, पानी जहां जहां रुकता है उसको पानी को हटाने का काम लिया गया है, तो नागरिकों को भी जहां दिखे कि उनके घर में, कंपाउंड में, गार्डन में कहीं अगर पानी फंसा हो तो उसको इमीडिएटली ड्रेन आउट कर दें ताकि मच्छर की ब्रीडिंग वहां पर ना हो। उसकी सब किस्म की तस्वीर हमारे महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ले रहे हैं, तो आपसे भी मैं ये इस चीज के ऊपर मदद चाहूंगा।
सुप्रिया, अब फिलहाल राहत है, अधिकारी ने ये कह दिया है कि थोड़ा सतर्कता बरती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
खबर सच है अगर BBC पर है।
दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने सिर से जुड़े हुए 28 महीने के दो बच्चों के दिमाग में खून की सप्लाई जारी रखने के लिए एक पेचीदा ऑपरेशन किया। ऐसे बच्चों को कंजॉइंड ट्विन्स कहा जाता है। उड़ीसा से दिल्ली लाए गए इन बच्चों का ऑपरेशन लगभग 24 घंटे तक चला। सर्जनों की टीम के प्रमुख डॉक्टर दीपक गुप्ता से हमारे सहयोगी अनंत प्रकाश ने इस ऑपरेशन के बारे में बात की और उस प्रक्रिया को जानना चाहा जिससे शायद बच्चों का जीवन बच जाए।
इनके पेरेंट्स जो उड़ीसा से आए थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उसको बच्चों को डे टू डे केयर में परेशानी है और बच्चे भी काफी ज्यादा डिसेबल्ड है, तो उसके लिए वो एम्स में हमारे पास आए थे। तो आने के बाद में बच्चों को जो हमने सारा MRI, एंजियोग्राम, CT स्कैन और इवैल्यूएशन करा था उसमें हमने देखा कि बच्चों के सर जुड़े हैं, उसके साथ साथ ब्रेन का काफी हिस्सा जुड़ा हुआ और ब्रेन की जो एक नाड़ी जो दोनों बच्चों को अलग करती है वो जुड़ी हुई थी। तो उसके लिए इन बच्चों का ऑपरेशन करना जरूरी था, तो हमने उसका ऑपरेशन किया।
इसमें एक चीज है कि एक नई बाईपास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है,
क्योंकि एक सिंगल वेसल है जो दोनों बच्चे के ब्रेन को ड्रेन करती है, तो अगर उस वेसल को हम काट देते हैं तो उसमें एक ही बच्चा बच पाता है, यानी कि दूसरे बच्चे को क्षति होना, नुकसान होना ऑलमोस्ट 100% होता है। तो हमने ये सोचा कि जैसे हार्ट के लोग बाईपास करते हैं, ऐसे क्यों ना ब्रेन का बाईपास करा जाए। तो हमने एक अलग से नाड़ी ली, वेन लिया, ग्राफ्ट लिया एक पेशेंट का, और वो हमने ब्रेन के अंदर डाला एक एंड से दूसरे एंड में, और जो छोटी छोटी नाड़ियां थी उसको उससे जोड़ा, जिससे कि जो दूसरा बच्चा है वो अपना सर्कुलेशन अपने आप ड्रेन कर पाए। तो ये हमने नई चीज करने की कोशिश की है, जो अभी तक मेरे हिसाब से जो हमने लिटरेचर में पढ़ा है अभी तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ है।
कितना जटिल ऑपरेशन है एक दुनिया में?
काफी जटिल ऑपरेशन है। आमतौर में पूरी दुनिया भर में कुल 70 मरीज इस तरह के हुए, 70 केसेस, जिसमें करीबन 60-70% की मोर्टेलिटी नोटिस करी गई है, डेथ हो जाती है बच्चों की ऑपरेशन करते हुए, ऑपरेशन के तुरंत बाद, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग करके साथ में हमने किया था। तो जिस तरह से हमने पहले प्लान किया उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया, और अभी तो बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चों की वेंटिलेटर से हट गए हैं, बच्चों का सीटी स्कैन भी हो गया ऑपरेशन के बाद, बच्चे ठीक हैं। अब तकरीबन 2-2.5 महीने के अंतराल पे जब बच्चों के एक्स्ट्रा स्किन हमें मिल जाएगी तब हम कोशिश करेंगे दोनों बच्चों को पूरा अलग करने के लिए।
अच्छा, इसमें एक चीज थी कि इसमें जापानी डॉक्टर भी इसमें साथ आए हैं।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हमने जापान से एक एक्सपर्ट को बुलाया था, प्रोफेसर टाकीजावा, जो सिर्फ वीनस बाईपास ही करते हैं, तो उन्होंने हमारी सर्जरी में, प्लानिंग में और सर्जरी करने में हमारी मदद करी शुरुआत।
अच्छा, बच्चों के पेरेंट्स से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि अमेरिका से एक सर्जन आने वाले हैं।
नहीं, हमने दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर हैं उन सब से हमने बात करी, क्योंकि ये पहला ऑपरेशन एम्स में क्या इंडिया में पहले इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। तो किसी भी डॉक्टर से आप न्यूरो सर्जन को अगर आप पूछेंगे तो किसी ने इस तरह का ऑपरेशन नहीं करा। तो किसी न्यूरो सर्जन की जिंदगी में आमतौर पर एक ही ऑपरेशन करता है, अगर कभी करता है तो ये, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि दुनिया भर में जिन डॉक्टरों ने पहले ऑपरेशन किया है क्यों ना उनसे बात करी जाए, उनका अनुभव पता करा जाए। तो जब उनसे सबसे बात करके उन्होंने कैसे बच्चों को मैनेज किया था, तो वो उसके कारण साथ में हमने सारी प्लानिंग करी।
ये थे एम्स के डॉक्टर दीपक गुप्ता।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। क्या वैवाहिक संबंध के बाद भी पत्नी अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है? यह सवाल एक बार फिर उभर कर सामने आया है, क्योंकि मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि विवाह में बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इससे विवाह नाम की संस्था ही डामाडोल हो जाएगी। ये मामला एक अरसे से अदालत में चल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि कानून की किताब में बलात्कार को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है और इसे भारतीय दंड विधान की धारा 375 के तहत अपराध घोषित किया गया है, लेकिन विवाह में बलात्कार की कानून के हिसाब से कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए इस विषय पर समाज में व्यापक बहस की जानी चाहिए। पर महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन मानते हैं कि विवाह की आड़ में पति को अपनी पत्नी से ज्यादती करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस विषय पर दोनों पक्षों की बात समझने के लिए हमने बात की सीपीआईएमएल लिबरेशन की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन से और विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सचिव डॉ सुरेंद्र जैन से। मैंने डॉ जैन से पहले पूछा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
ये जो वैवाहिक बलात्कार का विषय आ रहा है, वास्तव में जब ये विषय एक क्राइम के रूप में अगर घोषित हो जाता है, इसको डिफाइन करना, इसको किस रूप में कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, ये सब बहुत मुश्किल होगा और ऐसा लगता है कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। जैसे दहेज प्रथा, इसके विषय में कानून बना है। अब उस कानून का स्वयं जजमेंट में कई बार ये बात कही जा चुकी है कि आधे से ज्यादा मामले ऐसे आते हैं जो जेन्युइन नहीं है, छोटी अनबन हुई और दहेज का मामला डाल दिया। और केवल दहेज का नहीं, ये जो यौन शोषण के मामले भी हैं, इनमें न जाने कितने मामले ऐसे आते हैं जहां पर अनबन होती है, वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अनबन हो गई और महिला ने कह दिया कि मेरा यौन शोषण हो गया।
लेकिन उसके आधार पर किसी के साथ जाति तो नहीं होने दी जा सकती है?
बिल्कुल, ये निश्चित है, ये तो संभव ही नहीं है जाते होना। इसी ज्यादती को रोकने के लिए ही विवाह संस्थाएं बनाई गई।
और उस विवाह में अगर पति ज्यादती करता है?
सामान्यतः ऐसा नहीं होता, अपवाद होते, और अपवाद के आधार पर नियम बनाना, क्योंकि पति की ऐसा इच्छा नहीं है, पत्नी की है तो भी पति मान जाता है, पत्नी की नहीं है, पति की है तो भी पत्नी मान जाती है, ये सामान्यतः विवाह में होता ही है। अब इसको कानून के दायरे में परिवार को इन छोटी छोटी बातों के लिए लाकर खड़ा करना, मैं समझता हूँ कि न केवल परिवार की संस्था टूटेगी बल्कि समाज में एक प्रकार की अव्यवस्था इसके कारण से निर्माण हो जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर एक और चीज डाल देने से इस परिवार संस्था के अंदर टूटन आएगी, अविश्वास बढ़ेगा और परिवार संस्था बिखर जाएगी।
ये थे विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन। लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन मानती हैं कि बलात्कार अपराध है चाहे जिस परिस्थिति में किया जाए।
बलात्कार का एक ही डेफिनेशन है, किसी महिला से सहमति के खिलाफ यौन संबंध बनाने को बलात्कार कहा जाता है। अब वैवाहिक बलात्कार में और बलात्कार साधारण बलात्कार में कोई अंतर नहीं। कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि विवाह के अंदर कहीं ना कहीं बलात्कार का कोई प्राधिकार अगर पतियों को हमने नहीं दिया कि वो महिलाओं के अपनी पत्नियों की सहमति के बिना भी उनके साथ यौन संबंध बना सकते हैं, ये अधिकार अगर उनसे छीन लिया गया तो विवाह की संस्था नहीं बचेगी। मानी ये तो बहुत ही विवाह के संस्था के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग बात है। इसका मतलब विवाह की संस्था हमारे केंद्र सरकार की नजर में ऐसी संस्था है जहाँ पत्नी एक तरह से पति की संपत्ति हो गई और पति प्राधिकार से एक तरह से यौन संबंध की डिमांड कर सकता है अपनी पत्नी से और पत्नी उसमें ना बोलने का हक नहीं रखती है। ये शर्मनाक है कि हमारी केंद्र सरकार रख रही है।
लेकिन दूसरा पक्ष इसमें ये है कविता, हाँ। कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप उस विवाह की कल्पना कैसे कर सकती हैं जिसमें पत्नी कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की और इस मामले में वो पुलिस के पास जाती है, तो वो विवाह बचेगा कहाँ?
हो सकता है विवाह ना बचे, लेकिन मेरा कहना है कि पहले तो आप हमारे देश में देखिए कि खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में घरेलू हिंसा, पति के द्वारा पत्नी का पीटा जाना, ये बेहद कॉमन है। इसमें क्या शादी बचाना ज्यादा जरूरी है, क्या उस महिला को उसके उसके अधिकारों को बचाना, उसकी सेफ्टी को बचाना ज्यादा जरूरी है?
ये थी CPIML लिबरेशन की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन। और आगे बढ़ने से पहले खेल समाचार सुमिरन प्रीत कौर के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। कल हेडिंगली में दूसरा टेस्ट मैच हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर किया। वहीं दूसरी तरफ कल पहला टेस्ट मैच हुआ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच ढाका में, और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया। टेस्ट मैच से चलते हैं वनडे इंटरनेशनल मैच की ओर। कल कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा 4th वनडे इंटरनेशनल मैच। इस मैच में क्या हो सकती है स्ट्रेटजी, बता रहे हैं भारत के गेंदबाज कुलदीप यादव।
डिपेंड करता सिचुएशन कैसी है, पर मेरा स्टाइल वैसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक करूँ रन। मैं स्ट्रिक करने जाऊंगा तो शायद मैं रन और खा जाऊं, तो मैं हमेशा विकेट के लिए देखता हूं जिससे टीम को बेनिफिट हो, और एज वेल एज प्रेशर में भी टीम दूसरी टीम आती है अगर आप विकेट निकाल के देते हो। टीम के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जितना विकेट निकालेंगे उतना ईजी रहता है दूसरी टीम को बॉल आउट करने में।
तो कल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा 4th अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कोलंबो में। अब बात करते हैं टेनिस की। अमेरिका में चल रहे US ओपन के पहले राउंड में रॉजर फेडरर ने फ्रांसिस टियाफो को 4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4 से हराया। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नदाल ने सर्बिया के डुसेन लाजोविक को 7-6, 6-2, 6-2 से हरा दिया। आज US ओपन में मुकाबला होगा रूस की मारिया शारापोवा का हंगरी की टीमिया बेबोस के साथ दूसरे राउंड में। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और खेल समाचारों के बाद एक नजर सुर्खियों पर।
BBC समाचार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि जापान के ऊपर से मिसाइल दागना प्रशांत क्षेत्र में उसकी कार्रवाई का पहला कदम है। इसी के साथ उत्तर कोरिया ने आने वाले समय में और परीक्षण के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में BRD अस्पताल में पिछले 3 दिन में कम से कम 60 बच्चों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये मौतें इंसेफेलाइटिस समेत अन्य बीमारियों की वजह से हुई हैं। अमरीका में टेक्सस के ह्यूस्टन शहर में 4 दिन तक कहर बरपाने के बाद चक्रवात हार्वी पड़ोसी राज्य लुइसियाना की तरफ बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वेनेजुएला की सरकार ने अपनी नीति के तहत राजनीतिक विरोध को दबाने और जनता में डर फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश में आप्रवासन मामलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में म्यांमार के राखिन प्रांत की सीमा पर 18,000 रोहिंग्या मुस्लिम भाग कर आए। BBC समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही दिनभर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक के जरिए अब तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया भूमिका राय ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी अनुमति चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।